वाणी चल रही थी 12 फरवरी 1968 दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी हम एक बारी तूने ये याद की यात्रा की है उस याद की यात्रा में नंबरवार तो है ना क्योंकि सभी तो एक तरह से याद नहीं कर सकते टीचर तो फिर भी पुरुषार्थ करावेंगे हर एक सब्जेक्ट में उठाते रहते हैं मनसा नहीं तो वाचा वाचा नहीं तो कर्म उठाते तो है ना मनसा अर्थात मन मना तो भी तुम्हारे विकल्प विनाश होंगे वाचा से भी सभी को नालिश सुनाओ कर्मणा तो एक दो की सेवा समाज आदि करनी ही है बाप समझाते हैं यहां रहने वालों की परवरिश बाहर रहने वालों से होती है वास्तव में वह बाहर वाले भी कोई देते नहीं है वो तो और ही 100 गुना लेते हैं जब चावल मुट्ठी देते हैं तो समझना चाहिए हम तो शिव बाबा से लेते हैं बाबा हमारी ये चावल मुट्ठी स्वीकार कीजिए हम एडवांस में आपको थैंक्स देते हैं स्वीकार करने के लिए बाप को थैंक्स नहीं कहने का होता है हम अगर न लें तो जमा ही कैसे हो सकता है नहीं तो जिसको चीज मिलती है वो उनको थैंक्स कह देते हैं परंतु यहां तो वो बात नहीं है तुमको ही 100 गुना मिल जाता है इसलिए बाप थैंक्स नहीं देते लेकिन तुम ही थैंक्स देते हो ये बड़ी ही समझने की बातें हैं इसलिए ऐसा कोई न समझे कि हम देते हैं ये देने का ख्याल आने से ही पाप आत्मा बन पड़ती है ईश्वर से तो लेते हैं ना बाबा आप हमारी 2 मुट्ठी लेते हो यही आपका शुक्रिया है इसके बदले में आप हमको भविष्य में सेफ्टी में देंगे बाप जैसे कि अमानत लेते हैं अपने पास रखते नहीं है यहां का यहां भी वापस दे देते हैं और 21 जन्म का ब्याज में भी दे देते हैं लेते हैं 100 गुना करके देने के लिए परंतु बहुतों को अहंकार रहता है हमने इतना इतना दिया अब ऐसों में ज्ञान तो पूरा है नहीं समझो कोई शिव जयंती पर भेंट देते हैं तो कहना चाहिए बाबा कृपा करके आप स्वीकार करना, आप तो हमें रिटर्न में देने वाले हो, तो देने के साथ थैंक्स भी देना चाहिए। बाबा आप लेते हो फिर जमा करते हो, ये राज समझने के कारण गिनती करते रहते हैं, हमने इतना दिया नहीं समझते हैं तब तो। अरे तुम तो बाबा के पास अमानत रखते हो, सौ गुणा करने के लिए। अगर हम तुम्हारा जमा नहीं करें तो मिलेगा कहां से? अहंकार आने से फिर उसकी ताकत ही कम हो जाती है, देह अभिमान की टेव बहुत पड़ी हुई है, समझते हैं हमने बहुत दिया, अभी जास्ती हम नहीं देंगे। ऐसे ऐसे बहुतों का अंदर में ख्याल चलता है। बाबू तो दाता है, देने वाला है ना। 12 फरवरी अषट की वाणी का तीसरा सीमा, बाप दाता है, लेने वाला नहीं है। किसको देते हो? बाप आत्माओं का बाप है, रूहानी बाप है। तुम्हारा लेकर रूहों की दुनिया में जावेगा क्या? समझना चाहिए, ये अमानत बच्चों के लिए ही लेते हैं, उसको सौ गुना करके देते हैं। पॉइंट्स कितनी अच्छी अच्छी है, ऊपर जाना बहुत नाजुक है। ऐसा न हो और ही घाटा पाली में, देही अभिमानी में बहन बनने में ही बहुत मेहनत लगती है, और देही अभिमानी बनना सहज भी बहुत है, परंतु देह अभिमान छोड़ती नहीं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं अब नई दुनिया में चल करके वहां वाह शरीर लेना है, यहां कोई से भी दिल नहीं लगाओ, देश है तो जो भी देह के संबंधी याद है वो कोई भी याद न रहे। कितना क्लियर करके समझाती है, परंतु मनुष्य कुछ समझते ही नहीं। बाबा ने समझाया है, वो है भक्ति की गीता। ज्ञान मार्ग का तो कोई शास्त्र होता ही नहीं, ज्ञान तो तुम अभी ही सुनते हो फिर प्रारब्ध में चले जाते हो। अभी जो सुना सो सुना, फिर नई दुनिया में वहां शास्त्र रहते ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र गीता छपती ही आती, उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तो ये क्लियर करके लिखना चाहिए, झूठी कहने से मनुष्य बिगड़ करते हैं, बिगड़ते हैं तो बोलो। ये तो भक्ति मार्ग की गीता है, जो जन्म जन्मांतर पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आते हैं। ज्ञान कोई जन्म जन्मांतर नहीं सुना जाता है और ना हर एक जन्म में भगवान आते हैं, भगवान ही आकर के ज्ञान सुनाते हैं। जिस ज्ञान से प्रगति हो जाती है भगवान ही जानकार है। मनुष्य तो अज्ञानी है क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। भगवान तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, तो सब कुछ जानने वाला है। और बच्चों को ज्ञान मिलेगा ही तब जबकि बच्चों की सदगति होनी होगी। आत्मा की सदगति होती है, आत्मा कहा जाता है मनोबुद्धि को। अभी मनोबुद्धि रूपी आत्मा दुर्गति में पड़ी हुई है। बाप आकर जब ज्ञान सुनाते हैं, जानकारी देते हैं, तो दुर्गति से सदगति में बुद्धि आती है। बाकी तो भक्ति हो जाती है। मनुष्य शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। अब शास्त्र लिखे किसने? भांति भांति के मनुष्य गुरुओं ने ये शास्त्र लिखे। समझते नहीं है, ज्ञान एक से आता है, एक ही ज्ञान दाता है, उसे एक के मुख से निकली हुई बात दूसरे के कानों में जाती है, फिर उसी के मुख से आती है तो बात बदल जाती है। ज्ञान अज्ञान बन जाता है, इसलिए डायरेक्ट मुख से सुनना चाहिए। बाप कहते हैं ये सास सब भक्ति मानती है, गुरु लोग सुनाते आते हैं, शिष्य लोग सुनते जाते हैं, जन्म जन्मांतर ऐसा करते आए। सदगति तो किसी की हुई नहीं, इन शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने से मेरे साथ कोई भी नहीं मिल सकता। जब तक मैं ना आऊं तब तक कोई वो असली रास्ता नहीं मिल सकता। माया ने सभी को अंधा बना दिया है। अंधे बन गए हैं तो जैसे कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है ही नहीं। अभी तुम बच्चों को तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अपन को आत्मा समझो तो ज्ञान की धारणा भी होगी। आत्मा नहीं समझेंगे, देवान में रहेंगे तो ज्ञान बुद्धि में ठहर नहीं सकता। देह अभिमान में आने से बड़े बड़े विकार आते हैं। जो देही अभिमानी बनते जाएंगे वो बड़े ही शांत रहेंगे। उल्टा सुल्टा कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, सदैव अपने स्वधर्म में टिकना है। इस बात की तुमको अभी नारी मिलती है, कि आत्मा है ही शांत स्वरूप। आत्मा को शांति कहीं से बाहर से मिलेगी नहीं, आत्मा को तो शरीर द्वारा कर्म करना है, पार्ट बजाना ही है। अभी अशांति है क्योंकि रावण राज्य है। अभी आत्माभिमानी बनने से तुम आधा कल्प शांति में रहते हो। देह अभिमानी बनने से अशांति शुरू हो जाती है। इस समय 100% देह अभिमानी बने हुए हैं। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बाप समझाते हैं, हर 5000 वर्ष बाद तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बनकर के अपना राज भाग लेते हो। ये एक अंतिम जन्म देही अभिमानी जरूर बनना है। सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया है, पहले जब वो सतोपदान थे तो जंगल में रहते थे, उनको रोटी वहां ही पहुंचाते थे। सतोपदानता की ताकत थी ना, राजाएं भी उनको रोटी पहुंचाते थे। अभी सन्यासियों में वो ताकत नहीं रही है तो कुटियाओं को छोड़ करके शहर में आ गए हैं। अभी कुटियाएं खाली पड़ी, अभी कहते हैं गवर्नमेंट को हमने घर बार छोड़ा है, हमने त्याग किया है। गवर्नमेंट को भी ऐसे बताते हैं। फिर बताओ वो अंदर में आकर के क्यों बैठे हैं? गवर्नमेंट को भी पता थोड़ा ही पड़ता है, गवर्नमेंट में भी पत्थर बुद्धि मनुष्य। रावण की गवर्नमेंट तो सभी रावण संप्रदाय विशेष वर्ण इसको कहा जाता है, वैश्याल भारत का नाम भी इन्हीं वैश्याओं ने खराब किया है। तो है ही वैश्याल, परंतु उसमें भी फिर ये अति वैश्यालय बन पड़ा है। नाम बदनाम करने वाले हैं। कॉलेजों में, स्कूलों में कुमार कुमारियां कितने गंदे होते रहते हैं। यहां भी चलते कुमारियों पर राहु का ग्रह बैठ जाता है। कोई तो ट्रेटर भी बन पड़ती है, जैसे उस लड़ाई में ट्रेटर बनते हैं, यहां भी ऐसे हैं। ईश्वर का बन करके फिर माया की तरफ चली जाती है। ट्रेटर उनको कहा जाता है जो बाप का नाम बदनाम कर देते हैं। ऐसों की बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। हम बाबा का नाम बाला करके दिखाएंगे। बाबा कितना समझाते हैं सबका कल्याण करो, योग अक्षर कहने से किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बताओ कि याद में रहना है, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम बाप का वर्षा पाए लेंगे। ये लक्ष्मी नारायण का पद बाप का वर्षा है ना। ऊंचते ऊंच बाप आकर के ये ऊंचते ऊंच वर्षा देते हैं। बाप आकर के लक्ष्मी नारायण की दुनिया रचते हैं। उस दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, और ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तब तो इन्होंने वर्षा लिया, और ये वर्षा इन्होंने पुरुषोत्तम संगम युग पर लिया है। ये बात समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, ये तो बहुत सहज बात है। सिर्फ निश्चय बुद्धि हो, समझाने वाले का बाप से बहुत लव चाहिए। कई तो ऐसे हैं जो बाप को याद भी नहीं कर सकते, बाप बच्चों को इतना देते हैं जो उनको कभी छोड़ा नहीं जा सकता। चकमक है ना, जब सुई प्योर हो जाती है तो एकदम चकमक से चिपक जंग लगी हुई है तो चकमक से चिपक नहीं सकती, नीचे गिर जाती है। जंग छूट जाए तो उनको छुड़ाया नहीं जा सकता। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखते हो, परंतु इतना लव न होने के कारण छोड़कर चले जाते हैं। तो दुनियावी धंधे क्या है, बाप की दुकान के आगे ये दुनिया के धंधे तो कुछ भी नहीं है। बारह दुआ सबकी वाणी का चौथा भी नंबर वन धंधा तो ये है जो कोई बिरला व्यापारी ही कर सके। देही अभिमानी होने से फिर कब ये धंधा छोड़ भी नहीं सकेंगे। विचार किया जाता है कितना ऊंच बाप है, बात मत पूछो। ऊंचे बाप का धंधा भी ऊंचा होगा, सारे विश्व को आकर के प्राणदान देते हैं, सब बंधनों से छुड़ा करके मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। ऐसे बाप पर कितना लव होना चाहिए। और कितनी नम्रता होनी चाहिए। यहां तो देखो बाप को और ही बहुतों के साथ नम्रता से चलना पड़ता है। बाप आकर राजाओं का राजा बनाते हैं, उन राजाओं के सामने जाने में थरथर कांपते हैं, और यहां भी वो पत्थर मारते हैं, गाली देते हैं, परंतु शिव बाबा को तो कुछ हो न सके। क्यों? गाली देता है, पत्थर मारता है, गाली करता है तो चिपक जाती है क्या? ग्लानी किसको चिपकती है, देही अभिमानी को या देह अभिमानी को? शिव बाबा को तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो बेसमझी से गाली दे देते हैं, बाकी उनको कुछ होता नहीं है। होता नहीं है माना, उनकी गालियों का, ग्लानी का उनके ऊपर कोई असर होता नहीं है। निराकार को गाली कैसे देंगे? गाली कौन पकड़ेगा? तो देहलमानी होगा तो गाली की पकड़ में आएगा, प्रभावित होगा। नाम रूप वाले को गाली मिलेगी ना, ये बाबा की नाली कितनी वंडरफुल है और अति सहज भी है। कहते हैं बच्चे तुम हर पांच चार वर्ष के बाद ये पार्ट बजाते हो, सभी मनुष्य मात्र पार्टधारी, बात कितना अच्छी रीति समझाते। बात समझाते हैं, इनमें भी कोई ज्ञान थोड़े ही था, इनमें कोई कोई समझते हैं इनको कोई गुरु से ज्ञान मिला हुआ है। अगर गुरु होता तो फिर वो बहुतों को देता, सिर्फ इनको ही थोड़े देता, सिर्फ एक को ही छिपा करके थोड़े देंगे। ऐसे ऐसे बहुत समझते हैं कि इतने इन्होंने गुरु किए हैं, शायद पिछाड़ी वाले गुरु से इनको ये शक्ति मिल गई। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब तुम ऐसे नीचे बनो, बहुत नीचे से नीचे वर्षा मिलता है, विश्व की बादशाही देख करके दिल ही खुश हो जाती है कि मैं ये बनूंगा। ऐसा उमंग उत्साह अंदर में रहे तो अंत मते सुगति हो जाए। एक मिसाल बताते हैं ना, एक ने कहा मैं भैंस हूं भैंस हूं, तो ये सोचते सोचते उनको एकदम पक्का हो गया, बोले मैं तो भैंस हूं, इस खिड़की से कैसे निकलूं। अभी तुम तो बच्चे समझते हो कि तुमको तो शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद करते करते बाबा के नजदीक आ जाएंगे, अर्थात बाबा के स्वभाव संस्कारों से भरपूर हो जाएंगे। बाबा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनता है तो बच्चे भी ऐसे ही बन जाते हैं। बाप से हमको यह वर्षा मिलता है। तभी बाबा ने कहा था प्रभात फिर भी आज में भी इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को उठाओ। हम बाप की याद से यह वर्षा ले रहे हैं। ये वर्षा ऐसा है जिनकी शास्त्रों में कोई ग्लानी नहीं है। 33 करोड़ देवताओं की सात की ग्लानी है, परंतु इनकी कोई ग्लानी नहीं। इनके राज्य में विश्व में शांति का राज्य था, इनका राज्य था ना, तब तो शास्त्र में गायन है। वहां ब्रह्मलोक में तो शांति ही शांति है, परंतु वहां सुख नहीं है। यहां इस दुनिया में विश्व में शांति का राज्य था, और सुख भी था। बाप की तरह समझाते रहते हैं, परंतु बहुत थोड़े हैं जो भाग्यशाली बनकर निकलते हैं। फिर भी पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्प कल्प राजधानी स्थापन होती है, तकलीफ की कोई बात नहीं। बच्चे ड्रामानुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं, बाबा जानते हैं कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है ऐसा ही करते रहते हैं, फिक्रार्थ की कोई बात नहीं। किसके लिए फिक्रार्थ की बात नहीं, बाबा के लिए या बच्चों के लिए?
बच्चों के लिए।
शिव बाबा के लिए कोई फिक्र आज की बात नहीं है, बाकी बच्चों की बात है। बच्चों को तो फिक्र आप रहती है। ये याद की यात्रा है मुख्य, ये बहुत ऊंची सीढ़ी है, इसमें बहुत गुप्त मेहनत है। याद करना ही माया बुराई देती है। कोई भी योग नहीं है तो समझो ज्ञान भी कम है, पहचान कम है तो याद कम करते हैं, और ज्ञान तो बिल्कुल सिंपल है। परंतु मूल बात है बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। अभी टाइम फिर भी मिल रहा है, पिछाड़ी में तो ऐसा टाइम आएगा कि याद भी नहीं कर सकेंगे। अभी ही पुरुषार्थ करना है। बहुतों को तो बैज लगाने में भी लज्जा आती है, ये नहीं समझते हैं ये तो ज्ञान की तलवार है। इस छोटे से बैज पर कोई कोई भी समझा सकते हैं, परंतु मारे देह अभिमान के लगाते ही नहीं। कोई बैज को देखे तो आप ही पूछेगा ये कहां से मिला है, कहेंगे तुम किस संस्था के हो? बोलो हम तो ईश्वरीय संतान हैं, देह के बाप से ये स्वर्ग का वर्षा ले रहे। बाप को याद करने से ही पाप कट जाएगा। हम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। इतनी सहज बात है, बाप है ही सत्य, सत्य बाप जरूर सतोप्रधान बना देगा। सभी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अच्छा बनकर दिखाओ, अपना रजिस्टर रख करके दिखाओ। विजय माला में आना कोई मासी का घर नहीं है, कोई बिरले हैं जो अपने ऊपर ध्यान रखते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, बाप का कहना भी नहीं मानते। पुरुषार्थ करते करते पिछाड़ी में अडोल अवस्था में रह सकेंगे, इसलिए माला भी बहुत थोड़ की बनती है। अभी कैरेक्टर्स का रजिस्टर भी ले आना चाहिए, रोज कितना समय पढ़ा, कितना समय याद में रहा, क्या क्या खाया, क्या पिया। चार करने में अपनी चरण की बड़ी सेफ्टी है। कितनी बार खाता हूं, कितना समय खाने में जाता है, कितना समय सोने में जाता है, और क्या क्या करता रहता हूं, सब लिखना चाहिए। अभी तो ये बाप ओमनी प्रेजेंट है, सेकंड में आ सकते हैं। तुमको समझना चाहिए बाबा इसमें बैठा है, करण करावनहार है, करते भी है और कराते भी है, बच्चों को डायरेक्शन भी देते हैं और खुद भी करते रहते हैं। क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, बैठ करके हिसाब निकालो इस शरीर में क्या क्या कर सकते हैं। वासना ले सकते हैं, वासना क्या चीज है तो बताओ, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अच्छा ओम
सर, क्या हुआ? अरे तुम परम धाम जा सकते हो लखनऊ, तो बहुत नजदीक है।
बाबा ये 12 बड़े बड़े चित्र के बारे में भी मुरली में आया है।
हाँ जी,
ये एक एक धर्म के 12 मन के है ना, हर एक धर्म के।
हर धर्म के 12 मन के नहीं है
जी,
परंतु ऊंचते ऊंच जो धर्म है
जी,
उसके 12 मन के हैं जिनमें सब समाये हुए
जी।
जैसे 12 राशियां होती हैं, कोई भी मनुष्य दुनिया का हो उन 12 राशियों के अंदर ही होगा। तो ऐसे ही ये 12 विशेष आत्माएं हैं सूर्यवंशी। माला के 108 मणके, उनमें 12 के 9 ग्रुप हैं जो 9 नंबरवार धर्मों से कनेक्टेड हैं। जो सबसे ऊंचा ग्रुप है वो सूर्यवंशी ग्रुप है। उस सूर्यवंशी ग्रुप में 8 है उन सभी धर्मों के पूर्वज जो बाप से वर्षा लेते हैं, बाकी 4 ऐसे हैं जो खुद भी वर्षा नहीं लेते, नाम मात्र का वर्षा लेते हैं और दुनिया के संहार के काम में विशेष लगते हैं। ये संहार का कार्य भी विशेष है। तो 12 आत्माएं जैसे हर धर्म की बीज है, उनमें स्थापनाकारी भी है, पालना करने वाले भी है और विनाश करने वालों के भी बीज है। हर तरह के पूर्वज समाये हुए। जहां 12 चित्रों का उल्लेख किया है वो 12 जड़ चित्रों की ही बात नहीं है, पहले पहले वो 12 चैतन्य चित्र तैयार होंगे। उन चित्रों को समझाने की भी ज्यादा दरकार नहीं पड़ेगी, सामने आने से ही अपने आप समझ जावेंगे।
लक्ष्मी नारायण को पीछे दिखा,
लक्ष्मी नारायण को,
लक्ष्मी नारायण को पीछे दिखा,
लक्ष्मी नारायण
लक्ष्मी नारायण को क्यों पीछे दिखाते,
नारायण को क्यों पीछे
दिखाते नहीं, जब बोलते हैं तो लक्ष्मी का नाम पहले और नारायण का नाम बाद में, और सरस्वती को पहले नहीं बोलते, ब्रह्मा पहले और सरस्वती बाद में। और लक्ष्मी नारायण तो नई दुनिया के हैं और ब्रह्मा सरस्वती पुरानी दुनिया के। तो पुरानी दुनिया में पुरुषों को आगे रखा जाता है या स्त्रियों को आगे रखा जाता है? पुरुषों को आगे रख देते हैं। जब नई दुनिया थी तो स्त्रियों का मान था, स्त्रियों को आगे रखते थे और पुरुषों को पीछे रखते थे। अभी भी नई दुनिया आने वाली है, जो कन्याओं माताओं का मान रखेंगे, उनको आगे स्थान देंगे तो वो नई दुनिया में जल्दी जा सकेंगे। और बाबा ने भी बोला है, स्वर्ग के गेट कौन खोलेंगे? माताएं कन्याएं खोलेंगे। तो बाबा जिनको आगे बढ़ा रहा है, हमको उसमें सहयोग देना चाहिए। ऐसे ही शंकर पार्वती बोलते हैं, पार्वती शंकर नहीं बोलते, ये कहां की बात है? सत्युग नई दुनिया की बात है या संगम युग की बात है? अभी संगम युग की बातें हैं, इसलिए ब्रह्मा का नाम पहले या सरस्वती का नाम बाद में? शंकर का नाम पहले और पार्वती का नाम बाद में? जब नई दुनिया बनेगी तब ही बनेगी, जब कन्याओं माताओं को आगे किया जाएगा। बेसिक नॉलेज वाले थे उस समय भी अव्यक्त वाणी में बोला, पांडवों को शक्तियों का गार्ड बन करके रहना है, गाइड नहीं बनना है। अगर शक्तियों के गार्ड बने, गाइड बनेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ जाएगी। सो गड़बड़ पड़ गई। अभी एडवांस में भी देखा जाता है, कन्याओं माताओं को आगे नहीं बढ़ाते हैं, खुद आगे बढ़कर के बैठ जाते हैं, क्लेरिफिकेशन देने लग पड़ते हैं। जबकि बाबा ने मुरली में साफ बोल दिया है, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। तो जो खुद ही दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले हैं, उनको आगे तो नहीं बढ़ना चाहिए। ज्ञान सुनाने के लिए कन्याओं माताओं को चांस देना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो ड्रामा भी ऐसा ही बना हुआ है। ऐसा टाइम आएगा जो जबरियन कन्याओं माताओं को आगे रखना पड़ेगा।
मान लीजिए जो माता पढ़ी लिखी नहीं है तो वो माता कैसे सुनाएंगे?
पढ़ी लिखी नहीं है तो बिना पढ़े लिखे क्या अच्छे कर्म नहीं करके दिखाते हैं? दिखाते हैं अच्छे कर्म। तो कर्मों से सेवा नहीं होती है क्या? बोल बोल करने से ही सेवा होती है, या किसी की करनी देख करके भी लोग समझ जाते हैं ये बहुत अच्छी करनी करने वाला है? हैं? कर्मों से शिक्षा देना वो ज्यादा बड़ी बात है। बोल बोल करके शिक्षा देना वो शिक्षा के ऊपर है, तभी अमल लोग करेंगे जब शिक्षा देने वाले में खुद धारणा होगी। धारणा नहीं होती है तो कोई असर नहीं पड़ता।
बाबा भक्ति मार्ग में भैरव नाम आता है, इसका अर्थ क्या है? भैरव नाम आता है भक्ति मार्ग में, इसका अर्थ क्या
है? भैरव
नाम आता है भक्ति मार्ग।
अरे माताएं तो भक्ति मार्ग में बहुत है, जितने गांव उतनी देवियां बनी हुई है।
बाबा ब्रह्मास्त्र क्या है, नारायणास्त्र क्या है और शस्त्रास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र क्या है, नारायणास्त्र क्या है, अग्नियास्त्र क्या है, ये सब का मतलब क्या होता है?
ब्रह्मा को अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं,
ब्रह्मा के अस्त्र शस्त्र और विष्णु के अस्त्र शस्त्र ये अलग अलग दिखाए। वास्तव में है तो संगम युग की बातें। ब्रह्मा का अस्त्र जैसे दंडी स्वामी हुआ करते हैं, उनके हाथ में कौन सा अस्त्र दिखाया जाता है? दंड दिखाते हैं, उसमें ऐसा फरसा जैसा भी बना होता है, वो उनका एकमात्र अस्त्र है। जिस अस्त्र से कहते हैं उन्होंने विश्वामित्र को जीत लिया, वो पवित्रता का अस्त्र है। पवित्रता के अस्त्र से उन्होंने सारी प्राप्ति की, प्राप्ति के आधार पर वो सत्युग में जाके प्रिंस बनेंगे। ज्ञान नहीं है, योग नहीं है, ब्रह्मा स्वयं रचना है। रचयिता बाप को नहीं जानते तो भी पवित्रता के आधार पर इतनी ऊंची प्राप्ति करते हैं कि नई दुनिया में पहला पत्ता बनते हैं। ये ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र हो जाता है। हम ब्राह्मणों के जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या बनना है?
योगी बनना,
पवित्र बनना है। योगी भी किस लिए बनना है? पवित्र बनने के लिए योगी बनना है। इसलिए मुरली में बोला है ब्रह्मा को फॉलो करो, शंकर को फॉलो नहीं करना है। किसको फॉलो करो? कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो। कर्म इंद्रियों में पवित्रता भरी हुई है, ये हुआ ब्रह्मास्त्र। और अग्नियास्त्र, शास्त्रों में अग्नियास्त्र का नाम आया है तो शास्त्र पढ़ पढ़ के विदेशियों ने एटम बम तैयार कर लिए। अग्नि दो प्रकार की होती है, एक काम अग्नि होती है और एक क्रोध अग्नि होती है। काम अग्नि विनाश करने वाली है, ऐसे ही क्रोध अग्नि भी विनाश करने वाली है, परंतु उसके समकक्ष है उसका काट करने वाली योग अग्नि। जिनमें योग अग्नि होती है वो कोई भी प्रकार के क्रोध ही को शांत कर सकते हैं वाइब्रेशन के आधार पर। कैसा भी कामी हो उसके वाइब्रेशन में आने मात्र से शांत हो जाएगा। बांदेली माताएं इस बात का अनुभव भी करती हैं। जब बहुत ही याद में होती है तो उनको सफलता मिल जाती है। और तीसरा शस्त्र क्या बताया? पशुपत्यास। पशु कहते हैं जानवर को, शंकर का साथ कौन सा पशु दिखाया जाता है?
बैल,
बैल, बैल दिखाया जाता है। वो बैल कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्मा ही बैल है। इसलिए मुरली में बोला है शंकर के ऊपर शिव की सवारी, और शंकर किस पर सवारी करता है? बैल पर सवारी करता है।
बैल अर्थात ब्रह्मा की आत्मा, कृष्ण की आत्मा, वो ब्रह्मा की आत्मा की बुद्धि में अभी ये बात बैठी है कि गीता का भगवान कौन है? नहीं बैठी है। तो शंकर सवारी कर सकेगा है? नहीं कर सकता। तो अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा है, इसलिए पाशुपत अस्त्र भी विख्यात है। जब योग बल बढ़ेगा तो सवारी भी बढ़ेगी। कहते हैं छलांग लगाते हैं और बैल पर सवार हो जाते हैं। छलांग किसे कहा जाता है? हाई जंप। एक पुरुषार्थ होता है चलने का धीरे धीरे, एक पुरुषार्थ होता है दौड़ने का, एक पुरुषार्थ होता है उड़ने का, और एक पुरुषार्थ होता है हाई जंप लगाने का। तो जब हाई जंप लगाने का पुरुषार्थ होता है तो विजय प्राप्त हो जाती है। सारी दुनिया पशुओं की है, जानवर बुद्धियों की है, जानवरों के वाइब्रेशन को भी कौन चेंज करेंगे? मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य चेंज करेंगे या कोई ऊपर से देवता उतरेंगे?
करेंगे, मनन चिंतन मंथन।
मनन चिंतन करने वाले मनुष्य ही वाइब्रेशन को चेंज करेंगे और जानवर बुद्धि भी सुधर करके जानवर से मनुष्य और मनुष्य से देवता बनेंगे। तो शास्त्रों में जो भी बातें आई हुई है उसको संगम युग के वर्तमान समय से टैली करना चाहिए, सब बातों का समाधान मिलता है। और
रामायण में राम को नाग पांचवे भी राष्ट्रों में बांध दिया था।
हाँ जी,
राम भी बच गए।
वो अहिरावण की कथा दिखाते हैं। नाग किसे कहा जाता है?
सर्प को।
और शंकर जी को कितने प्रकार के सर्प दिखाए जाते हैं? एक कमर में सर्प दिखाया जाता है, दोनों बाजुओं में सर्प दिखाया जाता है, गले में सर्प दिखाते हैं, और सबसे ऊपर सर के ऊपर सर्प दिखाते हैं। कोई काम विकार का सूचक है, कोई क्रोध विकार का सूचक है, कोई लोभ का सूचक है, गले में मोह का सूचक है, और सबसे ऊपर अहंकार का सूचक है। ये पांच नाग रावण के ही पांच रूप है। माया रावण कहा जाता है। माया रावण को जो टाइटल मिला हुआ है वो बाप के समान टाइटल मिला है कोई है?
बाप का टाइटल मिला,
जो बाप का टाइटल है सर्वशक्तिमान,
माया भी सर्वशक्तिमान,
वो माया को भी सर्वशक्तिमान का टाइटल मिला हुआ है। वो नागों की भी शक्ति होती है, पांच विकारों की शक्ति में, पांच विकारों के पास में हम सबको बांध के रखती है। ये नाग पास है।
मन इतना कितना क्या विकारी है, कितना विकार काम किया है कि मन भागता है क्या? इससे नहीं
मन भागता है। 63 जन्म भगाया है तो भगाने की प्रैक्टिस ज्यादा की है या थमाने की प्रैक्टिस ज्यादा की है? भगवान को सर्वव्यापी मान लिया, इधर भगवान उधर भगवान, यहाँ भगवान वहाँ भगवान, इस तीर्थ में उस तीर्थ में, तो भागने की प्रैक्टिस हमने की ना, तो अब क्या करना पड़े? मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करनी पड़े। जितना भगाया है उतना ही एकाग्र करने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बार बार भागे, बार बार थमाओ। और किसी जन्म में तो ये अभ्यास हमको किसी ने सिखाया नहीं। अभी इसे एक जन्म में बाप हमको बताते हैं कि अभ्यास से ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है।
त्रिमूर्ति का जो चित्र दिखाया गया है और उसका
एक मिनट
त्रिमूर्ति का जो चित्र दिखाया गया है उसके बारे में
अरे कथा करें।
नहीं वो त्रिमूर्ति का चित्र क्यों दिखाया गया है?
मूर्ति का चित्र क्यों दिखाया गया है? और तीन मूर्तियों से काम होता है दुनिया की स्थापना पालना विनाश का, इसलिए दिखाया गया। क्या कहना चाहते हैं? अच्छा हाँ बताओ, तब तक ये सोच रहे हैं। हाँ बोलो।
इक्कीस अध्याय गीता की बात आई है, 21 अध्याय 18 से 51 से जब तक को हमने लिखे 3 साल जो है
18
अध्याय गीता है।
इक्कीस
अध्याय का चर्चा बता रहे हैं
सैतालीस से पचास तक जो वाणियां चली उनकी कापियां नहीं निकलती थी।
अच्छा,
क्योंकि एक ही स्थान पर रहे पड़े थे। जब माउंट आबू में आ गए और इधर उधर सेवा के लिए भेजा जाने लगा तो उसकी कापियां निकलने लगी और चारों तरफ बांटी जाने लगी, इसलिए उसको कहेंगे गीता शास्त्र ग्रंथ बन गया, गति तो हो गया।
हर कल्प के बाद सृष्टि की हूबहू पुनरावृत्ति होती है, तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि फर्स्ट कल्प चला होगा
है?
कभी ऐसा भी हुआ होगा कि पहली बार कल्प चला हो, तो उसमें किसी को भी अलग, हर आदमी को अलग अलग पार्ट दिया गया, तो किसी को अच्छा पार्ट दिया गया या किसी को बुरा, ऐसा क्यों?
आत्मा अनादि है, अजर अमर अविनाशी है या उसका आदि होता है? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो आत्मा का पार्ट भी अविनाशी है, वो बनाया नहीं जाता है। ये ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जिस आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है वो ज्यों का त्यों वैसे ही रिपीट होता रहता है। अगर कोई कहे कब भरा गया तो सवाल पैदा होता है किसने भरा, तो इन बातों का सवाल का जवाब नहीं और सवाल भी नहीं। आत्मा भी अजर अमर अविनाशी, परमात्मा बाप भी अजर अमर अविनाशी, और ये षष्ठी चक्र और उसके 5 तत्व भी अजर अमर अविनाशी। इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कब बना, ये चक्र है जो घूमता ही रहता है।
बाबा जमा मक्खी लेके आये खाना पतो पतो हमारा बिना नहाए ले खाना बनाए, हमारे जांगर नहीं बा हमारे हरियाला नहीं अपने हाथ से बनाए खाए।
आपको अपने हाथ से बनाने खाने नहीं देते?
बोलिए अभी ताकत नहीं है, अभी नहीं कर पा रहे हैं।
अरे खिचड़ी बना के खा लिया करो,
लहसुन प्याज डाल के बनाए सब बाबा के याद करके खा ली।
हाँ, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती, दाल भात इकट्ठा डाल दो और कुकर छोड़ दो, पतोई धोएगी।
हमारे जानवर नहीं है बनावे खाए।
अरे तुम्हें करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना है, उनसे कहो चावल साफ कर दो, वो चावल साफ कर देंगे, दाल साफ कर देंगे, तुम्हें सिर्फ लेकर के उसमें डालना और बैठे बैठे देखते रहना बाबा की याद में, वो अपने आप पक जाएगा, तुम्हें क्या करना है?
تو آدمی کی لمبائی کیا کیا ہوتی ہے؟ چھ فٹ کی لمبائی کی لمبائی ہوتی ہے. چھ فٹ کا آدمی ستیگ میں بھی ہوگا, ابھی بھی چھ فٹ کا ہوتا ہے, لیکن اس میں دیوی گن ایسے بھرے ہوئے ہوں گے, ایسے وائبریشن بھرے ہوئے ہوں گے یوگ کی طاقت کے, کہ دیکھنے سے ہی لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا.
پیپر میں نکلا تھا 80 فٹ لمبا کوئی آدمی ہے جس کا پیپر میں دیا تھا.
کتنا لمبا؟
80
فٹ لمبا آدمی پیپر میں نکلا.
پیپر میں نکلا اس کی اسٹھیاں نکلی, خدائی میں نکلا.
خدائی میں نکلا, زندہ نکلا کہ مرا ہوا نکلا؟
مرا ہوا,
مرا ہوا نکلا. چلو
10 فٹ ڈائمیٹر.
وہ تو ڈائناسور بھی دکھاتے ہیں. اس کا چتر بھی دیا. اچھا چلو, یہ تو عجوبا غروبا دیکھتے رہتے. اور
ایک پریوار ہم نے گیان میں نکل جاتا, اس کا پورا پریوار نکل,
پورا پریوار گیان میں چلے گا. ایڈوانس کی بات ہے, بیسک کی بات نہیں. ایڈوانس میں جس کا ایک پریوار کا سدسیہ گیان میں چل رہا ہو, اس کے لیے گارنٹی ہے کہ پورا کا پورا پریوار گیان میں چلے گا. یہ کیسے ہوگا؟ جب باپ کی پرتکشتا ہوگی تو جو گھر والے ہیں انہوں نے آپ کے سمپرک میں رہ کے زیادہ سنا ہے باپ کے بارے میں یا دنیا والوں نے سنا ہے؟ آپ جس گھر میں رہتے ہیں بھوں 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 باپ کے بارے میں بولتے رہتے ہیں, وہ سنے یا نہ سنے؟ ہاں, لیکن ابھی تو پرتکشتا نہیں ہوئی. اور جب ساری دنیا میں اخباروں سے, ٹی وی سے, ریڈیو سے, چاروں اور سے باپ کی پرتکشتا ہوگی, تو تمہارے گھر والے تم کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تب مانیں گے, پھر وہ بھی گیان میں چل پڑیں گے.
یہ جگدمبا جب پورنیما بنے گی تب باپ کو پہچانے گی, تو یہ پورنیما کی کب سے ان کی گڑنا کی جائے؟ جیسے باپ کے لیے 75 سے پرتشا کے لیے آتی ہے بات, ماتا کے لیے کب سے گڑنا کیا جائے؟ ان کی کلائیں کب تک بڑھیں گی, وہ پورن ہو جائیں گی؟
دلی کا سدھار ساری دنیا کا سدھار, دلی کا پریورتن سارے بھارت کا پریورتن, دلی کے اوپر سارا مدار ہے. اور دلی ہے ماتا, بھارت کی راجدھانی, اس میں برہما کی سول پرویش کرتی ہے. تو جگدمبا اصلی کون ہوئی؟ برہما. تو پہلے کس کا پریورتن ہوگا؟ پہلے بچے کا پریورتن ہوگا یا باپ کا پریورتن پہلے ہو جائے؟ باپ آیا ہوا ہے تو باپ بچے کو ساتھ لے کر کے جائے گا یا اکیلا چلا جائے گا؟ ساتھ لے کر کے جائے گا. تو بچہ وہ بدھی کا پہلے پریورتن ہوگا. جب بچے کی بدھی کا پریورتن ہوگا تو باپ کی تو بات ہی نہیں. اور برہما کا دن رات گایا جاتا ہے, پرجاپتا کا دن رات نہیں گایا جاتا. اور
ایک منٹ,
گڑت ودیا کا سب پرتھم خود کس نے کیا
اور کون کیا تھا؟ دنیا کی سب پرکار کی ودیاؤں کی کھوج ایک شنکر کے دوارا ہوئی. جتنی بھی کلائیں ہیں, جتنی بھی ودیائیں ہیں, سب کی شروعات کس کے دوارا ہوتی ہے؟ ایک شیو بابا دوسرا انکو. اور
آیا ہے,
ہاں
میں
जिस घर में प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है।
है
फिर दूसरी आया कि साकार और निराकार मेल को बाबा का
है। ब्रह्मा नहीं कहते हैं, बाबा कहते हैं।
हाँ, इसमें क्या अंतर?
मैं जिस तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि शिव जो है जिन्हें चार पांच ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होता है वो चार पांच ब्रह्मा प्रत्यक्ष होते हैं।
अच्छा।
लेकिन वो शिव बाबा नहीं है।
अच्छा।
ब्रह्मा को शिव बाबा नहीं कहा जाता।
अच्छा।
अगर ब्रह्मा को शिव बाबा कहा जाए तो ब्रह्मा का चित्र रखना चाहिए, ब्रह्मा के चित्र की पूजा होनी चाहिए। लेकिन भक्ति मार्ग में भी पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती, तो ब्रह्मा बात अलग और शिव बाबा बात अलग हो जाती है।
और
जोर से बोलो।
अमृत का बेहद मिथ्या अर्थ निकाल, अमृत अपने तीन देवता है हमारे।
हाँ,
उसका बेहद मिथ्या अर्थ निकाल।
अमृत का अर्थ ही है जो ज्ञान सुन करके लोग ऐसे निश्चय बुद्धि बन जाएं कि कभी मरे ही नहीं,
अमर बन
जाए, अमर हो जाए। अमृत का मतलब ही है अमर बनाने वाला। तो भगवान बाप आकर के ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जो बच्चे कभी जिंदगी में अनिश्चय बुद्धि न बने। तो पहले पहले जो ऐसा निकलता है उसका नाम पड़ता है अमरनाथ। और बोलो बोलो, टाइम कम रह गया। फिर
गोरखपुर में रामगढ़ ताल है उसका क्या मतलब
है?
गोरखपुर में रामगढ़ ताल है उसका क्या मतलब?
रामताल,
रामगढ़ ताल है,
रामगढ़ ताल। अच्छा, गढ़ माने किला, रामगढ़ माने राम का किला। और किले जितने भी बनाए जाते थे उन किलों के आसपास ताल भी बनाया जाता था, इसमें पानी भरा रहता था ताकि दुश्मन जल्दी हमला न कर सके। ताल में क्या भरा होता है?
जल,
जल भरा होता है। तो जल किस बात की निशानी है? ज्ञान जल की निशानी है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नेपाल में भी दिखाते हैं पारसनाथ का मंदिर, जहां जहां नारायण को दिखाते हैं वहां क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहां की यादगार है? संगमयुग की यादगार है। ज्ञान जल के सागर में निवास दिखाया है। तो ज्ञान जल के सागर में जो रहेगा, कांटों के जंगल में आग लगेगी, और सागर के जल में जो रहेगा या तालाब के जल में रहेगा उसमें आग लगेगी
नहीं
लगेगी? तो अच्छी बात है ना।
पंचकुला भी तो रामगढ़ है,
है?
पंचकुला में भी रामगढ़ है।
पंचकुला में रामगढ़ ताल नहीं है,
ताल नहीं है
वो, रामगढ़ है, राम का किला है।
बाबा
रामायण में रघु रघुनंदन रघुनाथ रघु
रघु माना सूर्य, जैसे कहते हैं सूर्यवंशी, वैसे ही रघु नाम का राजा बताया है शास्त्रों में। सूर्य के समान दैदीप्यमान था, तो रघुनाथ माना रघुवंशियों का नाथ, जैसे नाथ डाली जाती है।
बाबा, एक बच्चा परेशान है कि शंकर का पाठ क्यों नहीं मुरली में बताया जाता?
शंकर का पाठ
मुरली में नहीं बताया जाता कि शंकर का पाठ है?
शंकर का पाठ मुरली में नहीं बताया जाता। शंकर का नाम लिया जाता है मुरली में, नाम लिया जाता है,
तो नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर पड़ता है। इसे समझ लेना चाहिए कि नाम नहीं है तो क्या हुआ। नाम होता ही तब है जब कोई काम होता है, और ऐसे भी नहीं है कि मुरली में ये बोला है शंकर है ही नहीं। क्या शंकर है, परंतु शंकर का कोई पार्ट नहीं है। पार्ट नहीं है का मतलब पार्ट बजाया जाता है कर्मेंद्रियों से। वो शंकर जो है वो कर्मेंद्रियों से पार्ट कम बजाता है, लेकिन मन बुद्धि से पार्ट जास्ती बजाता है। इसलिए बोला शंकर का पार्ट, बाकी शंकर जरूर है। इसलिए कहा जाता है योग बल से विश्व की बात चाहिए। किसने ली? शंकर के लिए ही गाया जाता है विश्वनाथ, बाकी किसी मनुष्य के लिए थोड़े गाया जाता है।
बाबा, घर में अगर सब कोई ज्ञान में चलते हैं और फिर अशांति उनके पास बनी हो तो उनकी सेवा कैसे की जाएगी?
वाइब्रेशन से सेवा करो, बाबा की याद में रह करके अमृत वेले बैठो, उनको सर्च लाइट दो। जो बोल बोल कहने करने से नहीं सुनते हैं तो उनको मन के मौन से नई रंगत निकालो। वाचा में ज्यादा ताकत होती है, कर्मेंद्रियों की कर्मणा सेवा में ज्यादा ताकत होती है, या वाइब्रेशन से सारी सृष्टि सुधरेगी? वाइब्रेशन से सुधरेगी। तो योग बल का नाम बाला है। योग बल माने बुद्धि योग बल। बुद्धि योग की ऐसी एकाग्रता धारण करके बैठो जो उनके ऊपर असर पड़ जाए। उधर बज रहा है, ये ध्यान बोलो।
अष्टदेव अष्ट शक्ति और अष्ट रत्न में क्या अंतर है?
अष्टदेव
अष्टदेव
जो अष्टदेव है वो अपना भी नाश करते हैं और सारी दुनिया का भी नाश करते हैं, लेकिन जो नाश करते हैं वो विनाशकारी दुनिया जैसी जिसका नाश होना होता है उसका ही नाश करते हैं, या अष्टदेवों का नाश करते हैं? अष्टदेवों का तो नाश कर ही नहीं सकते, तो जो कचरा दुनिया होती है उसका नाश कर लेते हैं। विनाश होता ही है इम्प्योरिटी से, तो इम्प्योरिटी में वो ठीक ही आत्माएं हैं, लेकिन बीज रूप स्टेज वाली है, निराकारी स्टेज वाली है, इसलिए जल्दी से पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाती है, आदि वाली आत्माएं। बेसिक नॉलेज के आदि में भी होती है, एडवांस नॉलेज की आदि में भी होती है, और जब प्रत्यक्षता होती है तो भी अंत में होती है। आदि वालों को आदि से लेकर के अंत तक सहयोग बांध देने के लिए बाप दादा बांधा हुआ है।